अपने मन वचन काय की सक्रियता और हमारे भावों की शुभ अशुभता, इनके द्वारा ही हमारा पूरा व्यक्तित्व निर्मित होता है। हम यहाँ जैसा भी जीवन जी रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे अपने मन वचन काय की सक्रियता और हमारे शुभाशुभ परिणामों का ही प्रतिफल है। ऐसा हमने पिछले दिनों बहुत प्रकार से विचार करके अपने जीवन के अनुभव से जोड़ करके सीखने और समझने की कोशिश की है। यहाँ हम मनुष्य बने का अनुभव करते हैं, देवलोक देवपने का अनुभव करते हैं, नारकी जीव नारकीपने का अनुभव करता है और तिर्यंच जीव अपने तिर्यंचपने का अनुभव करता है। इन सब स्थितियों के लिए जीवात्मा स्वतः जिम्मेदार है। किसी ने किसी को नरक ले जाने के लिए और कोई उपाय किया हो या किसी ने किसी पर कृपा करके उसे देवता बना दिया हो, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे अपने कर्मों पर आधारित है। हमने जैसे कर्म किए वैसा हमें उस देह को धारण करके उस देह में उतना समय व्यतीत करना पड़ता है। तब क्यों ना हम अपने उन परिणामों और अपने मन वचन काय की क्रिया को समीचीन बनाएं, जिससे कि हमारी सुगति हम दुर्गति से बच सकें। ये निष्कर्ष हमें अपने कर्मों के आधार पर होने वाले अपने व्यक्तित्व के बारे में ले लेना चाहिए। हमने पिछले दिनों ये विचार किया था कि किस तरह से कोई जीव अपने परिणाम खोटे करके अपने लिए स्वयं नरक ले जाने का उपाय करता है। हम वैसा ना करें और अपने को नरक जाने से बचा लें। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ये हमारे लिए खोटी गति में ले जाने में कारण है। ऐसा ही माया तैरग्यो नस्य, मायाचारी छल कपट और षड्यंत्र का जो परिणाम है वो तिरंच आयु में हमें बंध का कारण बनता है। हम देखते हैं अपने आसपास तिरंच जीव अधिक मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक सभी जीव तिरंच ही हैं। संगी पंचेंद्री जीवों में मनुष्य हैं, नारकी हैं और देव। शेष सारे जीव जो है एक इंद्री से लेकर के और असंगी पंचेंद्री तक अनंतानंत जीव राशि तिरंच पने का अनुभव करती है। तिरंच किसे कहते हैं? जो बोझा ढोता है उसे तिरंच कहते हैं, एक परिभाषा बनाई। और जो हमेशा तिरस्कार को प्राप्त होता है वो तिरंच कहलाता है। तिरस्करोति इति तिरंच, जो हमेशा तिरस्कार का अनुभव करता रहता है। चीटी हमारे निकट आती दिखाई देती है, हम फौरन कहते हैं हटाओ इसे। गाय निकट आती दिखाई पड़ती है, हटाओ इसे, जाओ तो लाठी ले जाओ, भगा के आओ। ये अनुभव तिर्यंच को निरंतर करना पड़ता है। वे हमेशा तिरस्कृत ही होते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि यह जो तिर्यंच पर्याय है वो हमें कैसे किसी को प्राप्त होती होगी, क्यों जीव इस पर्याय में चला जाता है। कई बार मन में आता है इन तिर्यंच जीवों को देख करके कि इन्होंने ऐसा क्या किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें इस पर्याय का अनुभव करना पड़ा। मुझे तो विशेष रूप से और सूकर की पर्याय को देख करके बहुत मन में ये भाव आता है कि यह भी एक जीव है, लेकिन इसने ऐसा क्या किया होगा जिससे इस पर्याय का इसे अनुभव करना पड़ा। सांप का भी बच्चा क्यों ना हो, सर्प का भी हिंसक जीव है, उसका भी बच्चा क्यों ना हो, लेकिन उस छोटे से बच्चे को कितना भी क्रूर और हिंसक भी है, फिर भी एक बार सहसा प्रेम से गोद में लेने का मन होता है, लेकिन सूकर का कितना भी छोटा नवजात शिशु भी हो, छूने का मन भी नहीं होता। इतना तिरस्कार का भाव कैसे उसके प्रति आया। तिर्यंचों में भी जो है इस तरह की पर्याय उसने प्राप्त की है। कौन से ऐसे परिणाम होंगे, बहुत दिन तक ये प्रश्न मेरे मन में बना रहा। सूत्र जी में तो सूत्र लिखा हुआ है कि मायाचारी से तिरंच पर्याय मिलती है, लेकिन और क्या विशेषता रही होगी, तिरंच तो बहुत हैं। तब फिर एक भाव फल त्रयदर्शी नाम की किताब निकली, अभी कुछ दिन पहले ही जब उसमें पढ़ा तो लिखा था, जो त्यागी व्रतियों का निरंतर तिरस्कार करता है, उनका अनादर करता है और अपनी ही आत्म प्रशंसा और दूसरे की निरंतर निंदा करता है और अत्यंत आर्त और दौद्र ध्यान से जीवन व्यतीत करता है, वो सूकर की पर्याय को प्राप्त। तब जीवन भर लोग उसका तिरस्कार ही करते हैं, उसे छूना भी नहीं पसंद करते, क्योंकि उसने जो पूज्य पुरुष थे उनसे घृणा की है। उस घृणा का परिणाम यह हुआ कि उससे सब घृणा करते। ऐसा मालूम पड़ने पर हमारे मन में क्या भाव जागृत होना चाहिए कि कभी भी जो है जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं उनके प्रति घृणा का भाव, अनादर का भाव, अवज्ञा का भाव, उनके तिरस्कार का भाव, अपने साधर्मी के भी जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के बताए मार्ग पर चल रहे हैं उनके प्रति कभी तिरस्कार का भाव अपने साधर्मी के प्रति भी नहीं होना चाहिए, वरना ये भाव हमें उसी पर्याय की तरफ ले जाने में कारण बनेगा। ऐसा विचार मन के भीतर आना चाहिए। कुटिलता छल कपट सब पहचानते हैं इस चीज को, जो जैसा है वैसा प्रकट नहीं करना, अन्यथा रूप में प्ररूपित करना या अन्यथा रूप में प्रकट करना, इसी का नाम तो छल है। सब समझते हैं कि हम अपने को ही और दूसरे को, दोनों को ही ठगते रहते हैं। दूसरे को ठगने का तो विचार करते हैं, लेकिन ठगे स्वयं जाते हैं। दूसरे के साथ तो छल करने का विचार करते हैं, सो दूसरे के पुण्य पाप के उदय में वो उस छल कपट से प्रभावित हो सकता है, वो बिल्कुल जुदी बात है। लेकिन जिन क्षणों में मैं दूसरे को ठगने का भाव करता हूं, उस क्षण में मैं मानो अपने को ही ठगता हूं। जैसे किसी के अचानक दर्पण में चेहरा देखते समय एक बाल सफेद दिखाई पड़ गया, अब क्या करता उसको धीरे से दूसरे की आंख बचाकर और उखाड़ करके बाहर फेंक देता। दूसरा कोई अगर देख ले और कहता कि क्यों भाई क्या बात है, तो कहते कुछ नहीं, बहुत सारे काले बालों में एक बाल सुंदर नहीं लगता, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। जबकि मन में कौन सा भाव था कि इस सफेद बाल ने मेरे जीवन के अंतिम क्षणों की सूचना मुझे दे दी है, उससे अब क्या करूं, इसे ही हटा दूं, और अगर सारे बाल सफेद होने लगे तो कहीं से और उन बालों को काले करने के लिए उपाय करूं। ये किसके साथ छल है, दूसरे के साथ तो बाद में है, अपने साथ स्वयं छल है। करते हैं ऐसा कि नहीं करते। हमारे एक छुल्लक जी थे तो वो कभी कभी चिढ़ाने के लिए बोलते रहते थे कि पतलूम पहने वो जुल्फे रखाएं, वो भैया फिर रहे परों को खाएं। सो बहुत हंसी आती थी हमें, क्या ठीक तो है, माने भोजन की तो नहीं है गुंजाइश, वो भैया चमक धमक में दूसरे को दिखाने के लिए और इतने उपाय करते हैं दूसरे के साथ छल करने का उपाय करना मानो अपने साथ ही छल करना है। ये अपन के एकदम सहसा समझ में नहीं आता है, पर अपने को ये चीज बहुत अंतरंग में विचार करनी चाहिए कि कदम कदम पर हमारे व्यवहार में, हमारे बोलचाल में, हमारे रहन सहन में, और जितना ये जो दिखावा और छल कपट आ गया है वो दूसरे के लिए अहित का कारण नहीं, मेरे स्वयं के लिए है। देखते हैं जितनी गुंजाइश नहीं है उससे अधिक अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो कोई शादी ब्याह का मौका हो, चाहे वो कोई धार्मिक आयोजन हो, दोनों चीजें हैं, चाहे वो कोई सांसारिक सी चीज हो जिसे हम संपादित करते हैं। आज के समय में बेटी और बेटे का ब्याह करने वाले जानते हैं कि उन्हें उस ब्याह के पीछे कितना आडंबर करना पड़ता है, जितनी अपनी हैसियत नहीं है उससे कई गुना प्रदर्शित करना पड़ता है, वरना आज के समय में कोई पूछेगा। लेकिन यह प्रदर्शन, यह दिखावा, यह छल कपट मुझे कहां ले जाएगा, यह विचार नहीं आता। यह विचार तो आता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो चार लोगों के सामने मेरी नीची हो जाएगी, लेकिन मेरी संसार में दुर्गति हो जाएगी, ये ध्यान नहीं रखता। अगर ये ध्यान आ जावे तो क्यों व्यक्ति दिखावे में पड़ेगा। आज सारी चीजें, और हम जो भी अगर गौर से देखें, पहले लोग मोटा पहनते थे और मोटा खाते थे, आज आज दिखावे के चलते, और जिससे कि पेट भी न भरे और शरीर में कुछ न लगे, ऐसी दिखावटी स्वाद के पीछे सैकड़ों चीजें हम ग्रहण करेंगे, ऐसे वस्त्र आभूषण पहनेंगे जिनसे कि कोई विशेष हमें लाभ नहीं होने वाला, बल्कि जिनके धारण करने से और हमारे शरीर में कोई ना कोई व्याधि जो आजकल रियान बनते हैं हो रही है, वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि दिखाने में दिखने में भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, मैं उन्हें ही स्वीकार करूं। ये सब क्या चीज है, सहसा समझ में नहीं आती, चल रहा है, लेकिन विचार करें अगर सूक्ष्मता से तो ये सब के पीछे मेरे भीतर दिखावे का जो छल का परिणाम है वही तो छिपा हुआ है, मुझे स्वयं पकड़ में नहीं आता। मोटा मोटा तो समझ में आता है कि जब जैसा नहीं है वैसा दूसरे से कहता हूं तब वो छल माना जाता है, मैंने तो ऐसा किसी से कुछ नहीं किया, लेकिन यह जो हम कर रहे हैं वो उसी का तो एक रूप है, छल का ही रूप तो है। हमें विचार करना चाहिए इस चीज का कि यह जो मायाचारी है, दिखावा है, आडंबर है, छल कपट है, वो सब मुझे किस तरफ ले जाने के लिए है। इन्हीं एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री, ज्यादा हुआ तो संगी पंचेंद्री हुए भी तो ये वाली पर्यायें जो देखने में आती हैं, पशु की पर्याय, उन पर्यायों में हम पशुता का ही अनुभव करेंगे। अगर हम जरा सा चूक गए थे और चूक ही रहे हैं, आज पूरा जमाना अगर देखा जाए तो जीवन यापन के साधनों में जितना आडंबर आया है और जितना धर्म के आयोजनों में आडंबर आया है, उससे मालूम पड़ता है कि हम सब किस दिशा की तरफ चले जा रहे हैं। जो जैसा है, जितना है, उतना ही अगर हम प्रकट करें, उससे अतिरिक्त प्रकट ना करें तो भी काम चल सकता, तो भी जीवन चल सकता है। मेरी जितनी गुंजाइश है उतना मैं करता हूं, उससे अधिक के लिए मैं बाहर कुछ प्रदर्शित करूं और मेरी अपनी हैसियत हो ही नहीं, मेरी अपनी योग्यता हो ही नहीं, और मैं बाहर लोगों को अपने को योग्य दिखाने के लिए अत्यंत प्रयत्न करूं, तो इससे क्या होने वाला। एक घटना सबको मालूम है, पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है, त्रिलोक मंडल हाथी। त्रिलोक मंडल हाथी का जीव पूर्व जन्म में मुनि महाराज जी थे, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु कोई क्यों ना हो, मायाचारी दिखावा और छल कपट सबके लिए एक ही तरफ ले जाता है। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, छोटा हो बड़ा हो, दीन हो गरीब हो, बड़ा आदमी हो, कर्म सिद्धांत किसी के साथ कोई रियायत नहीं करता, किए हुए भावों का, किए हुए कर्मों का जैसा फल है वैसा ही सबको समान भाव से प्राप्त होता है। मुनि महाराज थे और वे विहार करते हुए और एक गांव में पहुंचते हैं। वहां उस गांव में जो मुनि महाराज 4 महीने से वर्षा योग की साधना कर रहे थे, अत्यंत तपस्वी थे, अत्यंत ज्ञानवान थे, वृक्ष के नीचे ही उन्होंने अपना वर्षा योग स्थापित किया था। सो वर्षा योग की समाप्ति पर वे वहां से गमन करके अन्यत्र विहार कर गए थे और उनके स्थान पर खाली जगह देख करके जो मुनि महाराज उस गांव में आए थे वे जाकर वहां बैठ गए। लोगों को तो इस चीज का भान नहीं हुआ और अगले दिन जब लोग आए और यही समझ करके कि ये वही मुनि महाराज हैं जिन्होंने 4 माह तक अत्यंत भीषण साधना और तपस्या की है, तो अत्यंत प्रशंसा करने लगे, गदगद हो करके उनकी स्तुति इत्यादि करने लगे। और वो जो मुनि महाराज थे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, इतना भी नहीं कहा कि भाई मैं वो नहीं हूं जिनकी आप इतनी श्रद्धा भक्ति से पूजा कर रहे हैं, मैं तो बहुत उनसे साधना में अल्प हूं, अल्पज्ञ हूं। यह नहीं कहा, मन में माया का भाव, छल का भाव आ गया। हाँ, और उसके परिणाम स्वरूप और त्रिलोक मंडल हाथी यानी तिर्यंच की पर्याय में जाना पड़ा। जब अपन इस घटना को पढ़ते हैं, ये हालांकि उनकी मान कषाई भी थी और अंतरंग में कहीं स्पष्टता नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जिसका परिणाम है मान महान विषरूप करहीं नीच गति जगत में। ये मान कषाई के लिए भी यही बात लागू होती है, मायाचारी के लिए भी यही बात लागू होती है। मान के पीछे भी देखें अगर तो मायाचारी ही छिपी है। सम्मान किसे चाहिए होता है भैया? उसे ही चाहिए होता है जिसके अंदर योग्यता नहीं होती। जिसके अंदर योग्यता होती उसे तो सम्मान मिलता है, उसे चाहिए नहीं रहता। ये ध्यान रखना, सम्मान की लालसा उसे रहती जिसे कि कभी सम्मान मिलेगा नहीं उसे मालूम। और सम्मान जिसे मिलता है वो तो अपने आप ही योग्य है, उसकी योग्यता ही उसका सम्मान है। लेकिन जब हम अपनी योग्यता से अधिक और इस तरह छल कपट करके, आडंबर और दिखावा करके बहुत अधिक यश ख्याति और मान सम्मान की आकांक्षा करते हैं, तो वह भी छलावा ही है, दूसरे के साथ नहीं अपने साथ। बहुत कठिन है निंदा सहना, आसान है प्रशंसा सुनना, बहुत कठिन है, क्योंकि परिणाम संभालना, जय जयकार करते लोग उस समय परिणाम संभालना के हो गए बड़े। अब बहुत लोग जय जयकार कर रहे हैं, फूल के समान ही रहे, कुप्पा हो गए फूल करके, तो गए नीचे, देर नहीं लगती, आपका तो कोई अहित नहीं होने वाला, आप तो प्रशंसा कर रहे हैं, महाराज ऐसे हैं, महाराज ऐसे हैं, बड़े सरल परिणामी हैं, बड़े भद्र जीव हैं। ओ कर लो आप प्रशंसा, मनो इते इते अपनी ओरिजिनलिटी मालूम रहो चाहिए। हाँ, कि हम कितने हैं। अगर ये हमने भ्रम कर लिया कि जैसा लोग कह रहे हैं वैसे ही है, तो हो गया फिर, ना अपना कल्याण होगा, दूसरा तो अपना प्रशंसा करके कल्याण कर लेगा। उस समय क्या विचार करना कि जैसा ये मुझे समझ रहे हैं सचमुच मुझे वैसा ही बनना है, मैं अभी वैसा नहीं हूं। ये जिस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं वो मेरे भीतर क्षमता है, मुझे उसे प्रकट करना चाहिए। ये जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे अंदर अभी वो क्षमता नहीं आई है, क्षमता है प्रकट नहीं हुई है, ऐसा विचार करें तो कहीं कोई छल नहीं है। और अगर उस समय ये भाव आ गया कि हाँ हुई मैं ऐसा, करना ही चाहिए इनको प्रशंसा, और आज करी और ध्यान इन्हें करेंगे तो बुराई लगेगी, तो संक्लेश होगा, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं छल था मन में। ये बहुत बहुत क्या कहते हैं उसको रिस्क वाला मामला है, ये दूसरे की प्रशंसा सावधानी से करना। लिखा तो ये है कि कोनो को नीचे पटकने हो तो प्रशंसा करो उसकी गिर जाएगा, हाँ ऐसा लिखा उसको। शुरू दिन ही आए थे तब हमने इशारा कर दिया था कि ये उपाधियों का चक्कर दूर ही रखना भैया, हमारी उतनी क्षमता नहीं है कि जो तुम्हारी उपाधि सहन कर सके, गड़बड़ में हम और पड़ जाए। हाँ बहुत सावधानी की आवश्यकता, मैं अपने लिए ही नहीं कह रहा हूं, अपन तो विचार कर रहे हैं कि अपने जीवन में ऐसे अवसर आते हैं उन अवसर पर हमारी परीक्षा हो जाती है, उन अवसर पर हम चूक ना जाएं, हम कहीं उस आडंबर में उस दिखावे में उसमें ना पड़ जाएं, वरना हमारा ही अपने हाथ से अहित हो, ऐसा विचार हमारे भीतर में बना रहना चाहिए, तब जाकर के हम इस मायाचारी से बच करके और इस दुर्गति से अपने को बचा पाएंगे, वरना कदम कदम पर दूसरे के लिए ठगने का उपाय और उपक्रम दोनों ही हमारे द्वारा होता रहता है, दुकानदारी में सुबह से शाम तक, इसी तरह से घर गृहस्थी में, और अब तो उन दोनों चीजों से हट करके धर्म के क्षेत्र में भी, इन तीनों क्षेत्रों में हम देखते हैं कदम कदम पर हमें इसी छल कपट का और मायाचारी का आलंबन लेना पड़ता है, लेकिन ये हमारे लिए ही दुखदाई है। दुकान पर बैठ करके किस तरह से हम व्यापार कर रहे हैं, किस तरह से अपनी दो पैसे की आजीविका के लिए कितना दूसरे के साथ क्षल कर रहे हैं, वो क्षल दूसरे के साथ नहीं, वो अपने स्वयं के साथ कर रहे हैं। घर गृहस्थी में भी इसी तरह की स्थिति है, दूसरे के यहां पर बुलौआ में जाएंगे, बजोन धरी है, भले ही भोजनों को ठीक न हो गए, मनोजोन भी कपड़ा धरे हैं भी पहन के और बिल्कुल ठसके के साथ जाएंगे, जा दिखाएंगे कि हमसे बड़ो को नहीं है, रईस नहीं है हमसे, अपने को धनवान दिखाने का यह जो भाव है, क्यों? क्योंकि पूजा होती धनवान की, सो अपने को किसी भी तरह जिस किसी तरह, चाहे धन की अपेक्षा से हो, चाहे ज्ञान की अपेक्षा से हो, किसी अपेक्षा से हो, अतिरिक्त जो दिखाने का अपने मन में विचार है वो सब जो है, और इल्यूजन माया तो सब समझते हैं, धन पैसा भी माया ही है, उसके लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं वो सब हमारे लिए और ठीक नहीं है, ऐसा मन में विचार करना चाहिए, और अपने आचरण में जितना बने उतना ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता रखनी चाहिए, अपने काम में, अपने वचन में, अपने मन में और अपने कर्म में, सबके प्रति हमारे मन में बहुत सहज और सरल भाव होना चाहिए, तब जाकर के और हम इस चीज से बच पाएंगे। एक छोटी सी घटना मैंने कहीं पढ़ी थी, एक सेल्समैन बहुत बड़ी दुकान में और काम करता था, उसके लिए काम ये था कि वो आने वाले खरीदारों को ठीक ठीक सलाह दे कि आपको कौन सी चीज आपके लिए ठीक रहेगी वो खरीदे, और वो सेल्समैन अपने काम में बहुत सजग होकर के, सावधान होकर के अपना काम करता था। एक दिन एक दंपत्ति आए और उन्हें साड़ियां खरीदनी थी, सेल्समैन से उन्होंने अपने लायक साड़ियां दिखाने के लिए कहा, तो सेल्समैन ने उन्हें तरह तरह की साड़ियां दिखाई, लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं आई, जो सेल्समैन ने नहीं दिखाई थी उस साड़ी के लिए वो कहने लगे कि ये दिखाइएगा। तो सेल्समैन ने कहा कि मेरी सलाह तो ये है कि ये आपके शरीर पर ठीक नहीं जचेगी, आप तो इनमें से लीजिएगा। पर वो लोग जो खरीदार थे वो नहीं माने और उन्होंने वही साड़ी जो कि सेल्समैन कह रहा था कि आपके ऊपर ठीक नहीं जचेगी वो खरीद ली। दूसरा एक और ग्राहक वहीं पर खड़ा ये देख रहा था, उसे भी जो दिखाई जा रही थी सेल्समैन के द्वारा साड़ियां, वो बहुत पसंद आई। उसने कहा ये दे दीजिएगा, कितने रुपए की है? उसने कहा 300 रुपए की। अरे तब आप 300 रुपए की साड़ी उन्हें बार बार खरीदने के लिए कह रहे थे, वो तो आपके यहां से 500 रुपए की साड़ी खरीदने के लिए उत्सुक थे। आपका व्यवहार तो कुछ समझ में नहीं आया, आपको तो वो 500 की कह रहे थे, तो आपको तो शहर से उनको उसी चीज के लिए कहना चाहिए था, सजेस्ट करना चाहिए था। तब सेल्समैन का जवाब क्या था, मैं यहां पर इसलिए नहीं रखा गया हूं कि मैं लोगों के साथ छल करूं, मैं तो सिर्फ इसलिए यहां पर बैठा हुआ हूं कि उन्हें जो योग्य है उस चीज की सलाह दूं। मुझे उनके साथ छल करने के लिए नहीं बिठाया गया कि मैं ज्यादा की चीज और जो ठीक नहीं है वो भी उन्हें दे दूं। बताइए एक दुकानदारी में भी व्यक्ति क्या ऐसी सावधानी रखता है, ये उदाहरण पढ़ करके मुझे लगा कि हम तो व्यक्ति को अगर नहीं भी जरूरत है तो उसे समझा बुझा करके और महंगी से महंगी वर्षों से पड़ी नहीं बिक रही होगी वो चीज और इतने बढ़िया लच्छेदार भाषा में बना करके उसको थमा दें, ले जाओ तुम तो बेलाइटरी हमारी, आपने तो क्षण भर के लिए दे दी, लेकिन आपने जो छल का भाव किया है उसी समय अगर आयुबंध हो, अगर क्योंकि आयुबंध का समय तो कोई देख के नहीं आया कि किस क्षण आयु बंधेगी। 7 कर्म तो निरंतर 24 घंटे खाते पीते सोते जागते हर समय जीव के बंधते रहते, 7ों कर्म अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। सिर्फ एक मात्र आयु कर्म है जो मात्र जीवन में 8 अवसर आते हैं जिनमें बनता है, पर वो कौन सा कब समय आएगा कहा नहीं जा सकता। तब सावधानी बहुत आवश्यक है, जिस समय हमने छल कपट का भाव किया है और उसी समय आयुबंध का अवसर है तो कौन सी आयु बंधेगी। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि माया तैरग्यो नश्य, मायाचारी के भाव से तो तिरंच आयु का ही बंध किया होगा आपने। बहुत बहुत धर्म किया होगा आपने, बहुत बहुत पुण्य का कार्य, लेकिन जिस क्षण आयुबंध का समय आया उस क्षण चूक गए तो वो क्षण आपके आपको तिरंच में ले जाएंगे। भले ही आपका पुण्य आपके साथ में हो, ऐसो एसी कार में घूमोगे लेकिन कुत्ते की पर्याय में, पर्याय कुत्ते के ही मिलेगी तिरंच पर्याय, क्योंकि मायाचारी की। और कई कई बार पाप करने वाला व्यक्ति भी क्षण भर के लिए संतोष परिणाम के फलस्वरूप और मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके पाप भी उसके साथ में हैं। सो मनुष्य होने के बावजूद भी एक एक दाने के लिए हाथ फैलाता रास्ते में दिख जाता है मनुष्य। अपने अपने इन कर्मों को हम चूक जाते हैं, नहीं संभाल पाते हैं तो कितना बड़ा हमें उसका प्रतिफल भोगना पड़ता है। ये विचार कर्म सिद्धांत पढ़ते समय अगर आ जावे तो हमारे अपने परिणामों को संभालने में हमें ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी। भैया सारा खेल तो हमें अपने परिणामों के संभालने का ही है। मैं पूरे इतने दिनों से आपके बीच हूं, अगर कोई ब्रीफ में और कहना चाहे कि महाराज 4.5 महीना का कहते रहे तो आप कह सकते इतने ही कहते रहे कि भैया परिणाम संभाल। इसके अलावा कुछ कहा हो अगर तो आप बता दीजिएगा संक्षेप में, कहीं से भी आचार्य भगवंतों ने जो भी बात कही है उसके अंत में क्या बात आती है, अपने परिणाम संभालो भाई, अपने जीवन के कर्म संभालो। जो आप कर रहे हैं उन सबको अगर हम संभालेंगे नहीं तो कौन संभालेगा, क्योंकि हम तो जिम्मेदार लोग हैं, मनुष्य हैं, बहुत ज्ञानवान हैं, विवेकवान हैं, तब हम ही तो संभालेंगे। तिरंज के लिए तो संभालने का अल्प ही अवसर है, एक इंद्री जीव अपने क्या परिणाम संभालेगा। खड़ा हुआ है पेड़, आप चाहे तलवार चलाओ चाहे माला पहनाओ, उसको कोई ज्यादा संवेदना भर है, सुख दुख का हर्ष विषाद का अनुभव कर लेता है, अपने आत्म कल्याण का हित अधिक अहित का विवेक करने की सामर्थ्य उसके पास कहाँ है। हम तो मनुष्य, हमारे पास तो हे उपादेय का विवेक है, भले बुरे का हमें ज्ञान है, तब फिर क्यों नहीं हम अपने आप को उससे लाभान्वित करके और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करें, करना चाहिए ऐसा विचार। और भी बहुत सारे कारण इस तिरंच आयु के लिए आचार्य भगवंतों ने लिखे हैं, वो भी अपन एक देख लें। जो धर्म नहीं है अधर्म है स्पष्ट जानते हैं, पर फिर भी अधर्म का ही उपदेश देना यह भी तिरंच आयु का। अधर्म को भी धर्म कह करके प्ररूपण करना छल ही तो है। अरे कुछ नहीं है इसमें, तो धर्म ही है, तुम तो खा लो, रात में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को कहूंगा बार बार, क्योंकि हमारी पहचान थी और अपने हाथ से हमने अपनी पहचान मिटाई है, मिटा रहे धीरे धीरे। जो जो पहचान मिटा रहे हमारे ख्याल से, तो उनको इससे बाहर कर देना चाहिए कि हमारी पहचान बनी रहे। दो हमारे चार जने रहे मनो, कम से कम पहचान तो बनी रहे, हमें नहीं चाहने 40 आदमी। हाँ, ऐसा करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग तो हमारी पहचान थी, छान के पानी पीना तो हमारी पहचान थी। और जो रात्रि भोजन कर रहा छान के पानी नहीं पी रहा, तो उसको बरका दो, एक तरफ कर दो, तुम हमारे शामिल नहीं है, हमारे चार ही जने ठीक। ऐसा एक बार मैंने मन में आता है, अब संभव तो नहीं है, दोष लगा। कई लोगों की ये प्रवृत्ति होती है, किसी जाति विशेष का, किसी कुल विशेष का, किसी के अच्छे आचरण का, और सहन नहीं हो पाता तो उसमें, और ढूंढ ढूंढ करके यहां वहां से और दोष लगाएंगे। वंचना कहलाती ये, दूसरे से जाकर के और कह देना कि वो तो ऐसा है, ताकि उसके प्रति उसके मन में जो प्रेम भाव है वो नष्ट हो जाता है, जो उसकी प्रामाणिकता है वो नष्ट हो जाती है। आपने तो ऐसा किया, दूसरे का भले ही बिगाड़ हुआ पर आपका स्वयं का उसके साथ बिगाड़ हो गया। बहुत अधिक विषमवाद में रुचि रखना, यह भी तिरंचायु के बंध का कारण। तू तू मैं छोटी छोटी चीजों के लिए हमेशा विषमवाद, ऐसा नहीं है, ऐसा है, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा। अरे भाई क्यों ऐसा व्यर्थ में। हाँ भाई ठीक है, आप भी ठीक कह रहे हैं, आपकी दृष्टि से आप भी सही हैं। नहीं, लेकिन ये जो खींच तान की प्रवृत्ति है विषमवाद की साधर्मी के प्रति, वो कहां ले जाएगी। कितना करते हैं अपन सुबह से शाम तक, काय के लिए, हमारी बात रह जा, दूसरे की नहीं रह जा, हमारी रह जावे इतनी नहीं है, ओ के संग जावी लगी कि दूसरे की नहीं रह जा, हमारी रह चाहे नहीं आए दूसरे की नहीं रह जा। ये क्या चीज है, ये विषमवाद की प्रवृत्ति है, ये भी तिरंचायु के बंध का कारण है। मिथ्या क्या बात है, मेरा वॉल्यूम तो मैं सोच रहा हूं कि कम बढ़ नहीं हो रहा, और इसमें हो रहा है। मिथ्या आजीविका के साधन अपनाना, अब इसमें तो सब पकड़ में आ गया। अभी बुरा नहीं मानना, कैसी कैसी चीजें हमने व्यापार में शामिल कर दिया, कभी सोचा आपने, हीरे जवाहरात सोने चांदी और कपड़े के व्यापार करने वाले हम, कितनी छोटी छोटी चीजों का व्यापार करने लगे, कितनी अपवित्र चीजों का व्यापार करने लगे हम, दो पैसे के पीछे। यहां तक कि अब नहीं कहते हम, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत लोगों को तकलीफ तो पहुंचेगी उससे। मैं तकलीफ पहुंचाने की नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या करें, वास्तविकता तो है कि हम कितने निकृष्ट। कई लोग यहां तो नहीं है, लेकिन कई जगह लोग जूते चप्पल तक का व्यापार करने देख करके कैसा लगता है कि हम यहां तक अपना पतन कर बैठे। ये सब मिथ्या आजीविका है, ये ध्यान रखिएगा। आपके मन में आएगा तो फिर हम क्या करें, जूते चप्पल पहनते तो हैं हम, लेकिन कौन से वाले, चमड़े के, नहीं, वो मिथ्या आजीविका है जिसमें अपार हिंसा हो रही है और चार पैसे के पीछे जो है, और हम वैसा व्यापार करते हैं। जितने कई लोग जो है आतिशबाजी के दुकानें सजाते हैं, ये सब क्या है, ये मिथ्या आजीविका है चार पैसे के लिए, क्योंकि 8-10 दिन के लिए अच्छी बिक्री होगी, लाखों रुपए का मुनाफा होगा इस पटाखे और फुलझड़ी में, आतिशबाजी में, इसलिए खोल लो रे दुकान, उतर जाके लगा लो एक तो अपनी, एक तो अपनी चल ही रही है, एक और लगा लो वहां जाकर। ये सब मिथ्या आजीविका, स्फोट जीविका कहलाती है, क्रूर कर्म है ये, खर कर्म, दो पैसे के पीछे। भैया नहीं मिले दो पैसा और क्या हुई है, दो कपड़ा हल्के पहन ले हैं, दो रोटी खा ले हैं, पूरी न खे हैं और कहा। अगर ऐसा विचार मन में आ जावे तो इतना ये क्यों करना पड़े। अपने ही अहित के उपाय हैं, मिथ्या आजीविका में बहुत सारी चीजें हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, इन सब के शेयर्स लोग ले रहे हैं, स्लॉटर हाउस के शेयर्स हैं, आश्चर्य होता है। तो सोच करके फिर कह रहे हैं दूसरे के सद्गुणों का लोभ करना, ये चीज बहुत तेजी से प्रवर्तित हो रही है। हाँ, दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति तो है ही, लेकिन दूसरे के सद्गुणों का लोभ कर देना, दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। दूसरे में कोई बहुत अच्छी चीज है और वो कोई चर्चा करे कि काहे तुमने सुनी, कितने बढ़िया उनका कैसा स्वभाव है, कितने, हाँ अबे तुम्हें मालूम नहीं यार, रावण के संगे सो पता लग जे है, अब बताओ अब जी क्या है, अब जी उसके सद्गुणों का लोभ है कि नहीं। वो तो प्रशंसा कर रहा है और आप जो है उसकी प्रशंसा के बीच में एक आपने ऐसी बात कह दी कि उसके सारे गुण पे पानी फिर गया और उसका वो एक दोष जो है इतना बड़ा हो। बताइए, ये रोज की प्रवृत्ति अपन के देखने में आती है, किसी के बहुत गुण हैं, भैया गुण ही गुण तो अकेले भगवान के हैं, वो बाकी तो सब गुण और दोष के ही से निर्मित हैं अपन सब, तो हमें तो गुणवत्ता देखनी चाहिए या कि गुणवत्ता का लोप करने का उपाय करना चाहिए। तो कह रहे कि गुणवत्ता का लोप करना भीतर कहीं तिरस्कार का भाव है, उसके बिना सद्गुणों का लोप होता नहीं। जो सद्गुणों की प्रशंसा करने वाला होगा वो कभी जो है ऐसा काम कर ही नहीं सकता। जिसके अंदर तिरस्कार का भाव है वही सद्गुणों का लोप करेगा। अब किसी तरह कर नहीं पा रहा है वो तिरस्कार, इसलिए जब सद्गुणों की चर्चा चलती है तो उसमें बीच में ऐसी बात कह करके कि आपने अभी उसके दोष देखे कहां है, उसके सारे सद्गुणों पर पानी फेर दिया। और निरंतर दुखी बने रहना, अच्छे कार्यों में भी आर्त ध्यान ही करते रहना निरंतर, कभी जो है, और अच्छे से अच्छी बात भी हो जावे तो भी हर्ष व्यक्त नहीं करना, हमेशा आर्त परिणाम ही बने रहना। ये जो है तिरंचायु के बंध के कारण है, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हम सब लोग ये विचार करें कि हमें अगर मनुष्य जीवन मिला है तो इस मनुष्य जीवन की सार्थकता इसमें है कि हम इस तरह के खोटे भावों से, मिथ्या भावों से, छल कपट से बच करके अपना हित करें, अपना भला करें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत वो दो, हे जिन वाणी भारती जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।
उदक चंदन तंदुल पोस्त कई चरु सुदी, पशु धूप फलार्घ कई,
सवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे मुनि राज मगम।
ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के संगस्त मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के पावन चरणारविंदों को अनर्घ्य पद प्राप्त
होगी। लोगों को बहुत पहले एक आर्ट गैलरी में और एक बहुत फेमस एक जो कलाकृति थी वो नीलाम की गई। इतनी बेजोड़ और इतनी सुंदर वो कलाकृति थी कि नीलामी के दाम बढ़ते बढ़ते और $3,00,000 में वो एक कलाकृति बेची गई। उस कलाकृति में कहने को तो कुछ रंग थे और एक कैनवास था, लेकिन उसमें जो भाव थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक मां अपने छोटे से बेटे को दूध पिला रही है। उसके आंखों में झलकता हुआ मातृत्व और बच्चे के चेहरे की प्रसन्नता, उस पर लोग निछावर थे। $3,00,000 इसकी कीमत थी। रंगों के भरे हुए ट्यूब और ब्रश और कैनवास इसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं थी। देखने वालों ने जो उसमें भाव दशा थी उसकी कीमत आंकी थी, और वो $3,00,000 में विदेश में वो कलाकृति बेच दी गई। उस कलाकृति के बेच देने के बाद जिसने वो खरीदी वो उसे हाथ में लिए है, और सैकड़ों लोग उसके चारों तरफ हैं। वो जब आर्ट गैलरी के बाहर निकलता है तो लोगों की नजर अचानक बाहर बैठे हुए भिखारियों की लाइन पर पड़ जाती है। उन भिखारियों के बीच में लोग देख करके दंग रह जाते हैं कि अरे ये कलाकृति और ये भीख मांगने वाली मां, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत गौर से देखते हैं तो हूबहू वही, और वास्तव में वह जो चित्र था उसी मां का था जो भिखारियों की लाइन में बैठी हुई और अपने गोद में छोटे से बच्चे को लिए हुए दो दो दाने मांग रही है। उसे भीख में दो दाने देने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसके चित्र को $3,00,000 में खरीदने वाले लोग हैं। सवाल ये है, चेतना निरंतर नष्ट होती जा रही है, लेकिन उस चेतना की संभाल के लिए जो भौतिक सुख सुविधा की सामग्री है उसकी कीमत आंकी जा रही है। उस चेतना की कोई कीमत नहीं है। अगर ये दृष्टिकोण लेकर के हम जीवन जी रहे हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि ये जीवन जीने का कोई बहुत बेहतर तरीका नहीं है। ऐसा तो कोई भी जी लेता है। हमें अपने जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो हमारी दृष्टि में चेतना का महत्व ज्यादा होना चाहिए। इन बाह्य वस्तुओं का, इन चीजों का, जड़ का महत्व नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, यदि हमारा मुख, हमारी दृष्टि ठीक दिशा में है तो हम देखें कि वी मोटिवेटेड बाई फियर आर ग्रीड। हम प्रेरणा किससे पा रहे हैं अपने जीने की, तो हम बहुत गौर से देखते हैं कि हमें हमारे जीवन के लिए प्रेरित कौन कर रहा है। जिस तरह हम जी रहे हैं उस जीने के लिए दो ही चीजें प्रेरित करती हमारे जीवन के लिए, एक हमारा भ्रम, हमारा भय, या कि हमारा लालच। फियर और ग्रीड, मोटिवेशन के दो ही तरीके देखने में आ रहे हैं आज वर्तमान में। आदमी जितने पाप करता है उस पाप के पीछे प्रेरणा क्या है? थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा अपने जीवन को सुरक्षित करने का भाव, क्योंकि भयभीत है कि मर ना जाऊं, और उस भय के चलते अपनी सुरक्षा के साधन ढूंढता है। सुरक्षा के साधन यानी एक अच्छा सा महल मेरे पास, मेरी गाड़ी मेरे पास, नोटियों की गड्डी, ये सब मुझे सुरक्षा दे देंगी, मुझे शायद मरण से मुक्त कर देंगी। इस सुरक्षा के लिए या कि इस लालच के पीछे हम निरंतर अपने जीवन को अहित की तरफ ले जा रहे हैं, हमारा ध्यान भी नहीं जाता। हम खोजें अपने भीतर कि मेरे जीवन जीने के लिए मुझे कौन प्रेरित कर रहा है। जिस मौजूदा स्थिति में मैं जीवन जी रहा हूं उसके लिए मेरे भीतर ऐसा क्या है जो मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ ऐसा कर लो। मैं दुकान पर जाता हूं सुबह से नहा धोकर के, पवित्र होकर के, भगवान के दर्शन करके, भगवान के सामने सैकड़ों सौगंधें लेकर के, और दुकान पर जाता हूं ग्राहक को देख करके मेरा मन बेईमानी करने का होता है। ये बेईमानी करने के लिए मुझे प्रेरित कौन करता है? मेरी अपनी लालच। मुझे ये देखना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर गौर से देखूं तो मुझे मंदिर जाने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिर जाने के लिए मेरा स्वार्थ ही मुझे प्रेरित कर रहा है?
दुकान पर बैठता हूँ तब भी स्वार्थवश, मंदिर जाता हूँ तब भी स्वार्थवश, किसी से मिलता जुलता हूँ, किसी से बहुत आत्मीयता भी व्यक्त करता हूँ तब भी स्वार्थवश। कहीं कोई परमार्थ मुझे मेरे जीवन के लिए जीने की प्रेरणा देने वाला हो, ऐसा नहीं है शायद। जीवन उसका ही श्रेष्ठ है जो परमार्थ के लिए जीता है, जो मोटिवेट होता है अपने और दूसरे के परोपकार के लिए, जिसके पूरे जीवन को प्रेरणा मिलती है तो अपने अंतरंग के भावों से प्रेरणा मिलती है, और वो भी सद्भाव से प्रेरणा मिलती है। हम तो यहां पर अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के अपना जीवन जीते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा स्वार्थपूर्ण जीवन जीना हमारा वास्तविक जीवन कहलाएगा। सुबह से शाम तक हम दूसरे से अपने स्वार्थ की पूर्ति करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमने अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिया। हमारा अपना कर्तव्य क्या है, कभी सोचा? अगर कोई हमें प्रेरित कर रहा है गलत, तब भी हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा एम, हमारा गोल क्या है, और उस गोल को अचीव करने के लिए हमने क्या क्या साधन अपनाए हैं, ये और हम थोड़ा सा डिसाइड कर लें अपने जीवन में, तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि हमें वास्तव में कैसा जीवन जीना चाहिए। पहली चीज, हमारी दृष्टि ठीक हो, हमारे अंतरंग में परमार्थ का भाव हो, और फिर हम पहचाने कि हमारा साध्य और हमारे साधन कैसे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर कोई इन तीनों बातों को विचार कर ले तो शायद अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक दिशा हमें मिल सकती है। हमारा साथ आत्म शांति पाना है या कि क्षणिक भौतिक शांति पाना है? आत्म सुख पाना हमारा लक्ष्य है या कि भौतिक सुख सुविधाएं पाना हमारा लक्ष्य है? हमने क्या बना रखा है अपने जीवन का लक्ष्य, और उस लक्ष्य को बनाने के बाद और हम अपने कर्तव्य से विमुख हुए हैं या अपना कर्तव्य कर रहे हैं? कर्तव्य एक ही है, हमारा मनुष्य है तो हमारे भीतर मनुष्यता होनी चाहिए, एक ही कर्तव्य। लेकिन अपने साध्य की पूर्ति के लिए क्या हम अपनी उस मनुष्यता को वलाए ताक नहीं रख देते हैं, एक तरफ रख करके, और हम अपनी उस मनुष्यता के स्तर से नीचे गिर करके और अपने जीवन को जीते हैं? क्या यही हमारा कर्तव्य है? चिड़िया शाम घिरने से पहले अपने घर लौट आती है, अपना दाना चुगना बंद कर देती है। गाय एक अंतर मुहूर्त पहले अपने घर मालिक के पास लौट जाती है, अपना दाना चुगना बंद कर देती। गाय भी घास खाना बंद कर देती है। हम नहीं लौट पाते हैं अपने घर, हम तो उन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं जिनसे हमें विमुख होना चाहिए था। सबके अपने अपने अनुशासन हैं, हमारे अपने जीवन का कोई अनुशासन नहीं है। कभी सोचा हमने? मैं अभी कल परसों ही लोगों से बात कर रहा था तो अचानक ये बात स्ट्राइक हुई कि अरे गोधूली की वेला, इसका मतलब है कि गायों के लौटने का समय है। उन्हें मालूम है, आपकी घड़ियां उनके पास नहीं है, पर उन्हें मालूम है कि बस हो गया, अब वापस लौटना है घर। और हमें तो पूरी जिंदगी संसार की यात्रा करते हो जाती, कभी ये नहीं लगता कि लौटना है वापस अपने तक, कभी नहीं आता ये बात, जबकि हमारा कर्तव्य था। हम तो समझदार और विवेकवान हैं, हमने अपने साध्य की पूर्ति के लिए जो हमारा दायित्व था, कर्तव्य था, वो पूरा किया है या नहीं किया है? हमारे जीवन का चरम लक्ष्य तो आत्म सुख और आत्म शांति पाने का था। थोड़े से भौतिक सुख सुविधा और शांति के लिए हमने कितनी कितनी लंबी यात्राएं की हैं, हम कभी वहां से वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे? कभी हमें सच्चे सुख की ललक हमारे भीतर उत्पन्न होगी, हम अपने उस कर्तव्य को, उस दायित्व को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? दो छोटी छोटी सी घटनाएं आपसे कहता हूं, जिसका साध्य पवित्र है और जिसने उस साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र अपनाए हैं, वही व्यक्ति सफल है। वरना तो जिसका साध धन पैसा है और साधन डाका डालना है, वो भी अपना जीवन जी लेता है। भैया ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं सोचना कि धन पैसा इकट्ठे करना नहीं हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो वो तो कोई भी कर लेता और किसी भी तरीके से कर लेता। आप दुकान खोल के और जितना जैसा व्यापार करके अपने धन संचय करते हैं, कोई बंदूक दिखा करके धन संचय कर लेता है, आप चार बातें बता करके धन संचय कर लेते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। उसकी बंदूक सामने दिखती, आपके अंदर की बात नहीं दिखती सामने। आपकी बंदूक चलाने का ढंग अलग है, आपके पैसे हड़पने का ढंग अलग है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे अपने साधन वही है। हमारा साध क्योंकि खोटा है, उसके लिए हम साधन भी खोटे अपनाते हैं। हमारा साध होना चाहिए था पवित्र और उसके प्राप्ति के उपाय, उसका साधन भी बहुत पवित्र होना चाहिए था। यही हमारा कर्तव्य था, हम अपने कर्तव्य से विमुख हुए हैं। एक पिता को चिंता थी कि उसका बेटा पढ़ लिख करके अच्छा बन जाए, तो पढ़ाया लिखाया। और चूंकि राजा के दरबार में पिता नौकरी करता था और उसका मन था कि बेटा भी राजा के यहां नौकरी करे, तो राजा के पास ले जाके कहा कि बेटे ने पढ़ लिख लिया है, आपके दरबार में कोई काम मिल जाए तो दे दीजिएगा। राजा ने आंख भी नहीं उठाई उस बेटे को देखने के लिए और उसके पिता से कहा कि जाओ अभी साल भर और अध्ययन कराओ। वो साल भर और अध्ययन कराने के लिए ले गया। जब वहां से लेके आया, फिर राजा से कहा कि अब रख लीजिएगा। राजा ने अब की बार थोड़ी सी आंख उठा के एक नजर देखी और कहा कि किसी सदगुरु के पास शिक्षा दिलाओ, अभी दरबार के योग्य नहीं है। पहले लोग शिक्षा के साथ साथ अपने कर्तव्य के पालन करने की दृष्टि मिली है, वैसा आचरण भीतर आया है या नहीं आया है। शिक्षा वही है श्रेष्ठ जो हमें हमारे कर्तव्य से परिचित कराती है। और हमारे पास आज किस तरह की शिक्षा है, हमें अपने कर्तव्य से विमुख करने वाली शिक्षा नहीं, हमारे कर्तव्य को करने में मदद देने वाली शिक्षा होनी चाहिए। किसी सदगुरु के पास ले जाकर शिक्षा दिलाओ, ताकि इसे ज्ञान के साथ साथ अपना कर्तव्य बोध भी होना चाहिए कि मैं मनुष्य हूं, मैं ज्ञानवान हूं, विवेकवान हूं, तो मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा साध्य क्या है और उसकी पूर्ति के लिए मुझे क्या कैसे करना चाहिए, ये कोई नहीं सिखाता। आज वर्तमान में यही सिखाते हैं कि दुकान मैंने जैसे चलाई है तुम उससे जरा ढंग से चलाना, मैं तो जहां जहां चूक गया हूं तुम मत चूकना, मैं जहां जहां दो पैसे किसी से ठगा गया हूं तुम दूसरे को ठग लेना। हमारे अपने शिक्षा देने के ढंग ये हैं। व्यापारी अपने तरह से अपने बेटे को तैयार करता है, एक लेमैन की तरह अपने बेटे को तैयार करता है, जो जिस जगह है वो शिक्षा दे करके उसे अपने कर्तव्य से विमुख कर रहा है। और हम सब भी जो है शिक्षा पाने के बाद भी अपने कर्तव्य को नहीं पहचान पाए। सदगुरु के पास वर्ष भर उस बेटे को ले जाकर के रखा गया, एक वर्ष होने को है और जब पिता वापस लेने अपने बेटे को पहुंचता है तो बेटा तो आंख उठा के भी नहीं देखता, तो पिता बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। जाकर के उससे बात करना चाहता कि चलो साल भर हो गया, अब वापस लौट चलते हैं, राजा के दरबार में काम मिल जाएगा, वो जाने से इनकार कर देता है। उसके गुरु से बोलते हैं कि आप कहिए ना, गुरु कहते हैं जाना चाहे तो चला जाए, मैं ना आने के लिए कहता हूं ना जाने के लिए कह सकता हूं। राजा के पास तक खबर पहुंची कि जिसको आपने सदगुरु के पास में साल भर पढ़ने के लिए भेजा था उसने तो अब आपके दरबार में आने से इनकार कर दिया। राजा खुद अपना राजगद्दी छोड़ करके उसे लेने आता है, सोचिएगा, और उससे निवेदन करता है कि अब सचमुच तुम मेरे दरबार के लायक हो गए। जो संसार को ठुकरा सके वो संसार के लायक है। क्या हम सब तो संसार को अपने भीतर रखे हुए लोग हैं और इसलिए संसार में यहां से वहां धक्के खाते फिरते हैं, लेकिन जो संसार को ठुकरा देता है उसे हम सिर माथे पर रखते हैं, ये अपने अनुभव से देख लीजिएगा। वो संसार के बीच रह करके भी संसार में पूज्यता पाता है जो संसार में लिप्त नहीं होता, और इसी वजह से कह रहा है कि चलो अब दरबार में तुम्हारी जरूरत है, लेकिन वो इनकार कर देता कि मुझे सच्चा दरबार मिल गया, मुझे मेरा कर्तव्य मालूम पड़ गया, अब कहीं और अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कर्तव्य बोध हमारे जीवन में हमें है, हम कहां चूक रहे हैं, कहां हम गलती कर रहे हैं, ये हमें ध्यान देना चाहिए। हम छोटी छोटी सी बातों में उलझ करके कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने दायित्व को अपने कर्तव्य को भूल जा रहे हैं। हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आचार्य भगवंतों ने तो लिखा है कि उलझे हुए मनुष्य को सुलझे हुए पशुओं से शिक्षा लें, जैसे उलझे हुए मुनि को सुलझे हुए सदगृहस्थ से शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसे उलझे हुए गृहस्थ को सुलझे हुए पशुओं से शिक्षा लेनी चाहिए। आज वही समय आ गया कि हमें, जो कि हम स्वयं विवेकवान हैं, दृष्टि संपन्न हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को अपने आचरण को नहीं पहचान पा रहे हैं कि कैसा आचरण करना चाहिए, क्या हमारा दायित्व है, तो हमें अपने आसपास के परिवेश से, उन छोटे छोटे जीवों से शिक्षा लेनी चाहिए, शायद उनसे हमें अपने कर्तव्य का बोध हो। एक और छोटी सी घटना ताकि कर्तव्य का बोध हो सके, और फिर अपन नमोकार करेंगे, इसी भावना के साथ करेंगे कि हमें दृष्टि मिले, अपने जीवन को ठीक ठीक पहचानने की दृष्टि मिले, हम निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जिए, परमार्थ हमारी दृष्टि में हमेशा रहे, और अपने साध्य की प्राप्ति के लिए जो साधन हम अपनाएं वो इतनी ध्यान से अपनाएं कि कहीं हमारे अपने मनुष्यता के दायित्व से हम विमुख ना हो जाएं। हम जो भी करें वो हमारा कर्तव्य होना चाहिए, वो कर्तव्य से अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। एक चिड़िया एक बगीचे में रोज आती थी, बहुत चिड़िया आती थी, फल खाती थी, पानी पीती थी, बगीचे का मालिक भी बहुत खुश होता था। वो वहीं के अपना अध्ययन भी किया करता था। कभी कभी तो चिड़िया आकर उसकी कुर्सी पर बैठ जाती थी, उसे अच्छा लगता था। एक दिन बच्चों के कहने से उसने, जैसे अभी आसपास बच्चे लोग, मैं तो बच्चे ही मानूंगा, अबोध हैं, नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, पटाखे और धमाके से कितनी हिंसा कर रहे हैं वे नहीं जानते हैं, उनके लिए तो क्षमा ही किया जा सकता। तो ऐसे ही एयर गन खरीद ली बच्चों के कहने से, काहे के लिए कि बगीचे में जो फल फूल लगे हैं उनको तोड़ने के लिए, निशाना साधेंगे फल टूट करके नीचे गिर जाएगा, इसके लिए खरीद ली। और ऐसे ही बैठे बैठे बच्चों के साथ कि लाओ हम बताते हैं कैसे वो अमरूद अभी तोड़ करके नीचे गिराते हैं, और जैसे ही एयर गन से फायर किया वो गोली फल को ना लग करके वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया को लगी। वो चिड़िया लहूलुहान होकर के क्षण भर में नीचे गिर गई, ये जब तक उसके पास पहुंचे तब तक तो उसके प्राणांत होने को थे, लेकिन मरने से पहले उसने पता नहीं किस तरह देखा, जैसे कह रही हो कि कम से कम तुम्हारे जैसे अच्छे व्यक्ति से तो ऐसी आशा नहीं थी, फिर भी तुमने आज तक दाना और पानी दिया है, तुम्हारे उस उपकार को मैं भूलूं नहीं, तुम्हारे हाथ से मुझे मरना भी पसंद है। और वो मर जाती है और ढेर सारी चिड़िया आकर के उस दृश्य को देख रही है, चकित हैं कि इस बगीचे के भीतर जहां की हमें हमेशा पानी और फल खाने मिलते थे, आज कोई हमें मार भी सकता है।
Mm-hmm.